तारीख 15 सितंबर दिन मंगलवार, दिन भर के साथ मैं रेहान फदल। बिहार चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद असंतोष के स्वर।
जिस तरीके से हम लोगों को जो जानकारी दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर था।
1965 युद्ध सीरीज में आज जिक्र कीलर बंधुओं की बहादुरी का। दोनों ने एक एक सैबर गिराया,
नीचे डिसेंड करके और उस पर गिरा दिया, उनको एक फायर किया, हिट किया, धुआं निकला, ये सब निकला और भागना शुरू कर दिया। उसके पहले कपिला भी गिरा दिया एक एयरक्राफ्ट और हमने वो भी देखा, हमने चलाया, कैप्टन गॉट हिम।
होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एकजुट दिखने की कोशिशें आज फिर नाकाम होती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के चुनावों में सीटों को लेकर बीजेपी के बंटवारे पर वो हैरान और दुखी हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी सीटों के बंटवारे को लेकर असंतुष्ट थे। कल ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर समझौता हुआ था। भारत के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार यौगिक फार्मिंग की अवधारणा का समर्थन करती है। राधामोहन सिंह ने कहा कि यौगिक फार्मिंग का मकसद सकारात्मक विचारों की मदद से बीज की क्षमता को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। भारत में आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। हाल के दिनों में खराब फसल और मौसम में बदलाव के कारण किसानों में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। सीरिया के उत्तर पूर्वी शहर हसाका में एक कार बम विस्फोट में 6 लोग मारे गए हैं। लगातार दूसरे दिन इस शहर को हमलों का निशाना बनाया गया है। कल किए गए 2 आत्मघाती हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी हसाका पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल हुए हमलों की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरियाई सरकार को दिए जा रहे रूसी सैन्य समर्थन का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी सुरक्षा बल ही इस्लामिक स्टेट के लड़ाकुओं को हरा सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे भी रूस की तरह दमिश्क के प्रशासन का समर्थन करें। अमरीका और उसके सहयोगी देश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ये तो साफ जाहिर है कि सीरिया के अधिकारियों और सेना के सक्रिय योगदान के बगैर जमीन पर सीरियाई सेना की भागीदारी के बिना इस्लामिक स्टेट से लड़ना, इस देश से और इस पूरे क्षेत्र से चरमपंथियों को हटाना नामुमकिन है। ये थे राष्ट्रपति पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की पुलिस ने पहली बार ये माना है कि पिछले महीने बैंकॉक में हुए बम विस्फोट का संबंध उइगर समुदाय के लोगों को चीन वापस भेजने से हो सकता है। एक पुलिस प्रवक्ता का मानना था कि हमलावर इस बात से नाराज थे कि अधिकारियों ने लोगों की तस्करी के उनके नेटवर्क को तितर बितर कर दिया। ये नेटवर्क उइगरों को चीन से थाईलैंड के जरिए तुर्की पहुँचाता था। बहुत से उइगर चीन से निकलना चाहते हैं। उनके मुताबिक उन्हें चीन में दमन का शिकार होना पड़ता है, लेकिन थाईलैंड ने जुलाई में करीब 100 उइगरों को वापस चीन भेज दिया था। तुर्की के अभियोक्ताओं ने कथित चरमपंथी प्रचार प्रसार के लिए दोगन मीडिया ग्रुप की छानबीन शुरू कर दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार विधानसभा के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा होने के दूसरे ही दिन लोक जनशक्ति पार्टी ने इस पर सार्वजनिक रूप से अपना असंतोष व्यक्त करते हुए आज कहा कि इससे उसे धक्का लगा है, क्योंकि ये वो बंटवारा नहीं है जो पहले तय हुआ था। गठबंधन में 2 दलित नेताओं का होना बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बता रहे हैं जुबैर अहमद।
बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान ने आज सीटों के बंटवारे पर आपत्ति जताई। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से मानो वो कह रहे हो, तुझसे नाराज नहीं हैरान हूं मैं। उन्होंने कहा, बंटवारा जिस तरह से हुआ है उससे वो शॉक्ड है, यानी हैरान है, लेकिन नाराज नहीं है।
मैं पुनः दोहराता हूँ, नाराजगी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, नाराजगी बिल्कुल नहीं थी। शौक जैसा मैंने कहा कि हम लोगों के लिए शॉकिंग बस इतना था कि जिस तरीके से हम लोगों को जो जानकारी दी गई थी और जो जानकारी सार्वजनिक की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर था। अब मैं इस बात को समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी खुद, क्योंकि वो तीन तीन और दलों के साथ वो चर्चा कर रही है। हो सकता है कि शायद लास्ट मिनट में जो दूसरे दलों के साथ चेंजेस हुए हो वो हम तक पहुंचाना उनके जहन में नहीं रहा हो, या वो इसकी जानकारी देना उनके जहन में नहीं रहा हो। मैं उनकी इस मजबूरी को समझ रहा हूँ।
शायद वो इस बात पर नाराज नहीं कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को 40 सीटें दी। चिराग हैरान इस बात पर हैं कि जीतन राम मांझी को 20 सीटें क्यों दी गईं। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि सीटों का चयन होना अभी बाकी है।
सीटों के चयन को लेकर हम लोग की औपचारिक बातचीत अभी तक नहीं हुई है। पीछे कुछ दिनों से विभिन्न और मुद्दे थे जिसको हमारा गठबंधन लेकर उलझा हुआ था। आज से सीटों के चयन को लेकर बातचीत औपचारिक इस पर शुरू होगी। मुझे लगता है आज से कल तक इस पर कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाएगा।
चिराग पासवान का तर्क यह है कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे का जन हाल में हुआ है, इसलिए नई पार्टी को 20 से कम सीटें मिलनी चाहिए थी। वो ये भी कह रहे थे कि जैसा उन्हें बताया गया था वैसा हुआ नहीं। शायद उनके कहने का मतलब ये था कि मांझी की पार्टी को 20 से कहीं कम सीटें देने पर सहमति हुई थी, लेकिन आखिरी समय में इसमें बदलाव लाया गया। उनका कहना था कि हो सकता है कि उन तक बदलाव की खबर पहुंचाने में भूल हो गई हो। सोमवार को जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह सीटों के बंटवारे के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके दाएं और बाएं रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तीनों पुरुष ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे मानो वो एक बड़े परिवार की हैसियत से बिहार के विधानसभा चुनाव में लालू और नीतीश के महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए तैयार। लेकिन इस भाईचारगी के मुखौटे के नीचे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लगता। अमित शाह कल देर रात सीनियर पासवान से मिले लेकिन फर्क नहीं पड़ा, और आज चिराग पासवान ने अपने पार्टी की चिंता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई। मामला गंभीर लगता है क्योंकि गठबंधन में ये फैसला हुआ था कि आपसी मनमुटाव को बाहर नहीं जाहिर करना है, चिराग ने किया। अमित शाह को बीजेपी के अंदर मास्टर रणनीतिकार कहा जाता है, ये उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान है। बीजेपी बिहार में ऊंची जाति की पार्टी मानी जाती है। अमित शाह पासवान और मांझी की दलित पार्टियों और पिछड़ी जाति के उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हाथ मिलाकर चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी यह है कि एक घाट में दो दलित नेताओं को पानी कैसे पिलाएं। मांझी दावा करते हैं कि बिहार में दलित और महादलितों के सबसे बड़े नेता वो हैं। रामविलास पासवान का कहना है कि दलितों के वो सालों से नेता चले आ रहे हैं। पहले मांझी नाराज थे लेकिन जब उन्हें 20 सीटें मिल गए तो उनकी नाराजगी दूर हो गई। अब पासवान का खेमा संतुष्ट नहीं है। अमित शाह अगर एक को मनाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि एनडीए गठबंधन को फिलहाल कोई भारी खतरा नहीं है। दरार को मिटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन समय कम है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
जहां एक तरफ पूरा यूरोप शरणार्थियों की समस्या से निपटने के तरीके ढूंढ रहा है, वहीं हंगरी ने आपातकाल की घोषणा करते हुए अपनी दक्षिणी सीमा सील कर दी है। साथ ही वहां कटीले तार लगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस तैनात है। पुलिस का कहना है कि वो अब तक अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले करीब 60 शरणार्थियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हंगरी के इस फैसले पर एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
ये उन शरणार्थियों की आवाजें हैं जिन्हें हंगरी में घुसने से रोक दिया गया है। हंगरी ने सर्बिया से लगी अपनी दक्षिणी सीमा सील कर दी है, जिसके बाद यूरोप में शरणार्थी संकट और अधिक गहरा गया है। नए नियमों के अनुसार जो भी अवैध रूप से हंगरी में घुसने की कोशिश करेगा उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के प्रवक्ता जॉल्टन कोवाक्स कहते हैं कि शरणार्थियों को रोकने की जिम्मेदारी अकेले हंगरी की नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रीस, जो कि शेंगेन समझौते के तहत लोगों को पासपोर्ट के बिना सीमा पर आने जाने की सहमति देता है, वो अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा। कोवाक्स कहते हैं,
हमारे लिए ये एक नई स्थिति है और हमें लगता है कि यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं या जो सदस्य बनना चाहते हैं उन सभी को हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो ग्रीस एक ऐसा देश है जो शरणार्थियों की समस्या के बीच घिरा है लेकिन अपना काम सही से नहीं कर रहा। शेंगेन समझौते के तहत ग्रीस ने जो जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था, अगर वो उसे पूरा करता तो आज हमारा देश इस समस्या से नहीं जूझ रहा होता।
हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के प्रवक्ता जोल्टन कोवाक्स के शब्द। हंगेरियन हेल्सकी कमेटी नामक मानवाधिकार संगठन की प्रोजेक्ट मैनेजर अनिको बकोनी हंगरी की सीमा से लगे देश सर्बिया में मौजूद है। उनके अनुसार नए नियमों के चलते शरणार्थियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो कहती हैं,
जिन लोगों को भी पुलिस पकड़ेगी उन्हें तथाकथित ट्रांजिट जोन्स में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें अपने शरण का दावा करना होगा, जिसके बाद हंगरी शायद ही उन्हें अपने यहाँ पनाह देगा। शरणार्थियों के उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे और अगर वो सर्बिया की तरफ से हंगरी में घुसे होंगे तो उन्हें वापस सर्बिया भेज दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हंगरी का मानना है कि सर्बिया एक सुरक्षित देश है और शरणार्थियों को वहां भी शरण और सुरक्षा दोनों दिए जा सकते हैं।
मानवाधिकार अधिकारी अनिको बकोनी। लेकिन सर्बिया ने हंगरी के इस कदम का समर्थन नहीं किया है। सर्बिया के श्रम मंत्री अलेक्जेंडर वुलिन ने कहा कि वो शरणार्थियों की मदद करने को तैयार है, लेकिन साथ ही कुछ आशंकाएं भी जाहिर की। उन्होंने कहा,
We offer the shelter, we offer the food, we offer them medicine, so everyone will be provided.
हम सभी शरणार्थियों को रहने की जगह, खाना और दवाइयाँ देंगे, लेकिन अगर वो सर्बिया में 2 या 3 दिन रुकते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर वो इससे ज्यादा यहाँ रुकते हैं तो हमारे लिए स्थिति गंभीर हो जाएगी। फिलहाल हम शरणार्थियों के रहने के लिए अस्थायी आश्रयों का नेटवर्क तैयार करने में जुटे हुए हैं। सर्बिया के श्रम मंत्री अलेक्जेंडर वुलन के शब्द। पुलिस ने साल हंगरी आने वाले शरणार्थियों की संख्या करीब 1,80,000 दर्ज की है, लेकिन शरणार्थियों की भीड़ से निपटने के लिए हंगरी ने अक्टूबर से 175 किलोमीटर लंबी अपनी दक्षिणी सीमा पर कटीले बाड़ लगाने का फैसला लिया था।
हंगरी में आपातकाल की घोषणा।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
छत्तीसगढ़ में वेदांता की बालकों की इकाइयां एक एक कर बंद की जा रही हैं। अब आर्थिक मंदी का हवाला देते हुए स्मेल्टर प्लांट बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है और 650 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। 26 दिन से इसके खिलाफ चल रहा आंदोलन और तेज हो गया है। जब भाजपा की पिछली 2 सरकारों में मंत्री रहे आदिवासी नेता ननकी राम कंवर भी वेदांता के खिलाफ आ गए हैं। आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में पिछले महीने भर से वेदांता की भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के हजारों कर्मचारी रोज रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सालाना 30,000 टन एल्यूमिनियम शीट्स और कॉइल्स जैसे रोल्ड उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी बालको ने साफ कर दिया है कि वह अगले कुछ दिनों में अपनी शीट रोलिंग शॉप एवं फाउंड्री शॉप बंद करने वाली है। इन दोनों इकाइयों के बंद होने से 1,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों इकाइयों के बंद होने का साफ मतलब है कि अब यहाँ एल्यूमिनियम का उत्पादन नहीं हो सकेगा और वेदांता ने अपने इस एल्यूमिनियम प्लांट को ही पूरी तरह से बंद करने का फैसला ले लिया है। बालको प्रबंधन के इस फैसले से सत्ता पक्ष भी नाराज है और विपक्षी दल कांग्रेस भी। छत्तीसगढ़ की भाजपा की पिछली 2 सरकारों में गृहमंत्री और वन मंत्री रहे आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि सरकार वेदांता से 51% शेयर वापस ले। कंवर का मानना है कि अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता बालकों को बंद करने के लिए झूठ का सहारा ले रही है।
केंद्र शासन माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि इसको ऑडिट कराना चाहिए और जितना भी हिसाब है उसको ठीक करना चाहिए।
यूपीए सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता चरणदास महंत का कहना है कि वेदांता इस इकाई को बंद कर कहीं और इसे शुरू करना चाहती है।
हमारे लोग जहां काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग जहां काम कर रहे हैं, उस यूनिट को बंद करके बाहर ले जाना चाहता है, हमारे कोरबा का पैसा बाहर ले जाना चाहता है, इसका हम लोग विरोध करते हैं।
लेकिन बालको के जनसंपर्क अधिकारी वीके श्रीवास्तव का कहना है कि कंपनी लगातार घाटे में है और इन इकाइयों को बंद करने के अलावा कंपनी के पास कोई चारा नहीं है।
देखिए, पिछले लगभग 1 साल से एल्युमिनियम उद्योग जो है, पूरे भारत के एल्युमिनियम उद्योग घाटे में चल रहे हैं। बालको भी बहुत ज़्यादा घाटे में है। 6 महीने की बात कर ले तो 6 महीने में तो इतना ज़्यादा घाटा हो गया कि उसे बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में पूरा प्लांट बंद हो जाने के कगार पर आ गया हुआ है। तो जैसे कोई जहाज डूबने लगता है तो उस वक्त आदमी चाहता है कि जितने भी अनावश्यक सामान है उसको वो कर दें। तो वैसे ही हम लोगों ने, मतलब कि जो सबसे खराब, सबसे ज़्यादा नुकसान में जो प्लांट चल रहा था, चार साल से रोलिंग मिल नुकसान में चल रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि रोलिंग मिल को हम लोग अभी बंद कर देंगे, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ताकि पूरे बालको को बचाया जा सके।
लेकिन बालको के श्रमिक नेता राजेंद्र मिश्र इसे बालको का बहाना मानते हैं।
हमारा उसमें ये कहना है कि ये तो मार्केट है, मार्केट में तो कभी उतार चढ़ाव आता रहता है। आज डाउन पोजीशन पे आप बंद करने जा रहे हो, कल को अगर अप हो जाएगा तो चालू करोगे क्या उसको? एक बार जो बंद हो गया चालू होने वाला नहीं है, अगर चालू भी होगा तो आउटसोर्सिंग शुरू करेंगे, ठेका में दे देंगे उसको, तो ये तो गलत है। एक अच्छे खासे उद्योग को चल रहा है, उसको नियमित कर्मचारियों से जो काम लिया जाता था उसको बंद कर ठेका में कराओगे, और ठेका में कैसा? आउटसोर्सिंग में, मतलब किसी एक ठेका दे देंगे वही आगे चलाएगा, तो ये तो उचित नहीं है, इसलिए हम लोग सब विरोध कर रहे हैं।
धरना, आंदोलन और इन सवाल जवाब के बीच बालको प्रबंधन ने क्लोजर रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को सौंप दी है। जिस दिन इनकी स्वीकृति मिलेगी, बालको में हमेशा हमेशा के लिए प्रबंधन की ओर से तालाबंदी कर दी जाएगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
ये बीबीसी है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किसी एक युद्ध में दो सगे भाइयों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। 1965 की लड़ाई में ये उपलब्धि हासिल की थी कीलर बंधुओं ट्रेवर और डेंसिल ने, जिन्हें पाकिस्तान का एक एक सैबर जेट गिराने के लिए वीर चक्र दिया गया था। 1965 युद्ध की 15वीं कड़ी में सुनिए कीलर बंधुओं की कहानी। उस दिन पठानकोट के नेट पायलट्स को तड़के 3 बजे ही जगा दिया गया था। ब्रीफिंग के बाद 4 मिस्टियर्स विमानों ने 1500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए छम की तरफ उड़ान भरी। पाकिस्तानी रडारों ने मिस्टियर्स की गतिविधियों को ट्रैक किया और कुछ ही पलों में उनको इंटरसेप्ट करने के लिए 6 सेबर और 2 स्टार फाइटर्स वहां पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तानी रडार को यह नहीं दिखाई दिया कि मिस्टियर्स के ठीक पीछे 4 नेट्स ने भी उड़ान भरी थी। वो 4 उंगलियों का फॉर्मेशन बनाते हुए जमीन से 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। नेट्स को लीड कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर। ट्रेवर के भाई डेंसिल कीलर याद करते हैं।
ऑन थर्ड हम लोग ने एक प्लान बनाया, एक मिस्टर भेजेंगे छम में एज ए डिकॉय, उसके बाद 2 4 4 फॉर्मेशन नेट भेजेंगे। जॉनी ग्रीन वाज रीडिंग फ्रंट, ट्रेवर वाज एट द रियर सेक्शन। इन लोग चढ़ गया, अब पाकिस्तान देखा इसको रेडार पर, तो जब उसने डायरेक्ट किया उसने फ्रंट वाला पर डायरेक्ट किया। ट्रेवर माय ब्रदर सॉ द एयरक्राफ्ट कमिंग दिस वे, सो येल्ड बोगी बोगी, हम लोग बोगी 3 o'clock, 3 o'clock is the side, and Goodman was told to go back. So when he turned, everyone broke this way, and the sabers followed the front section. So my brother came from the back. The moment they got from the back, they came to know because they were all turning, and they started to fight there. So isi ladai mein, my brother shot down the first aircraft. It is the first aircraft shot down since independence by an Indian pilot.
Trevor Keeler ko usi din Veer Chakra dene ki ghoshna ki gayi. इसके ठीक 16 दिनों बाद चाविंडा सेक्टर में एक बार फिर नेट्स को मिस्टियर्स को स्कॉट करने की जिम्मेदारी दी गई। नेट्स के एक सेक्शन को लीड कर रहे थे ट्रेवर के बड़े भाई डेंसिल कीलर, उनके साथ थे फ्लाइंग ऑफिसर मुन्ना राय, और दूसरे सेक्शन में थे फ्लाइंग ऑफिसर विनय कद्दू कपिला और फ्लाइंग ऑफिसर विजय मायादेव, बाद में एयर मार्शल बने विनय कपिला याद करते हैं।
तो हम नीचे फ्लाई करते रहे ताकि हम एक ऐसी एडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंच सकें जहाँ के सेबर हमको कम से कम डिस्टेंस पे देखें। उनके भी 2 सब सेक्शन थे, तो डेंजल कीलर और मुन्ना राय ने एक टुकड़ी पकड़ी जो नीचे वाली टुकड़ी थी, मैंने पकड़ी ऊपर वाली टुकड़ी। इत्तेफाक से उन्होंने हमें काफ़ी देर से देखा, मगर जैसे उन्होंने हमको देखा तो दोनों सब सेक्शन ने अपने मनूवर चालू करे। अब जैसे वो पहला मनूवर उन्होंने किया, बहुत हार्ड टर्न, ये थी बात कि सेबर लेवल ऑपरेशंस में, लेवल मनूवर्स में हमारे से थोड़ा एडवांटेजेस था उसका टर्निंग रेडियस परफॉर्मेंस, मगर हमारा जो परफॉर्मेंस था वर्टिकल मनूवरिंग में उनसे बहुत सुपीरियर था, हमारा रेट ऑफ पावर, हमारा रिजर्व पावर, तो हम उसी का फ़ायदा उठाते थे अपनी ट्रेनिंग में भी, और यहाँ भी हमारी वो ट्रेनिंग बहुत काम आई। मुन्ना राय का पहला मिशन था, उन्होंने ये पहला हार्ड टर्न कोप नहीं कर पाए, तो वो कीलर साहब से अलग हो गए। क्योंकि वो अलग हो गए, किलर ने उसको कहा कि भई आप ऐसे करो, ये कोर्स है बेस का, आप सीधा कोर्स फुल थ्रॉटल और हेड टू बेस, यू डोंट रिमेन हियर। इधर मैं और मायादव ये दो जहाज के साथ नजर आए। तो किलर को मैं नजर आ रहा था, मुझे किलर की टुकड़ी नजर नहीं आ रही थी। तो हर थोड़े देर के बाद वो मुझे बताते रहते थे कि भाई आपकी टेल क्लियर है, आपके पीछे कोई नहीं है, और हमारी वही मनूवरिंग शुरू हुई जी। तो ऐसे के नीचे आते रहे हम, मोस्ट ऑफ आर मनूवरिंग विद डाउनवर्ड्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फाइनली हम करीब 150-200 फुट पे होंगे, फाइनल मनूवरिंग जब हमारी हो रही थी, इट वॉज मोर ऑर लेस ट्री टॉप लेवल, जस्ट अबाव द ट्रीज। इस मनूवरिंग में मैं एक जहाज के पीछे काफी आसानी से करीब 6-7 मनूवर के बाद उसकी 6 o'clock पोजिशन पे पहुंच गया, और मेरा गन साइट उसके ऊपर था कॉकपिट पे, और मैंने गन से फायर किया, एक सेल्वो किया, थोड़ी देर बाद दूसरा सेल्वो किया, क्योंकि शॉर्ट बर्स्ट देते थे हम। तो जैसे मैंने दूसरा सेल्वो दिया, आई वाज क्लोजिंग इन, मैं काफी तेजी से उसके पास आ रहा था, मैंने खींच के ऊपर ले लिया जहाज। उस टाइम डेंजल ने मुझे बताया, कैप्स यू गॉट हिम, ही इज गोइंग डाउन।
इस बीच डेंजल न सिर्फ अपने हिस्से में आए दो सैबरों पर नजर रख रहे थे, बल्कि कपिला को रह कर टेल क्लियरेंस का संदेश भी भेज रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सेबर वहां से सुरक्षित भाग निकलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपना नेट उसके पीछे लगा दिया। सेबर नेट को नहीं देख पाया। जब वो अचानक दाईं ओर मुड़ा तो डेंजल की फायरिंग रेंज में आ गया। सेबर को डेंजल का बर्स लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा और वो बहुत तेजी से नीचे जाने लगा।
ऊपर से हम सोचा वो देखेगा नहीं, हम उसको सिटिंग डक लेके शूटिंग करें, मगर जैसे हम ऊपर पहुंचा तो हमने देखा कि उनके दो ड्रॉप टैंक्स गिरेंगे। इसका मतलब है कि हम लड़ाई के लिए हम अपने जहाज क्लीन अप करेंगे, जिससे हम कैपेबिलिटीज और आ जाएगा उसमें। तो हमने पता लगा कि देख लिया और हमको लड़ने वाला है, हम अपना ड्रॉप टैंक की रख लिया, क्योंकि ऐसे था कि हम 100 किलोमीटर बाल दूर था, लड़ाई का बाद कितना टाइम लगेगा, वापस भी जाना है, हम लोग ये सब सोचना पड़ता। एकदम हमारे सामने आया, हमने थोड़ा शूट किया बट लगा नहीं, बट हमारे फिल्म में इतना बड़ा आया जहाज, आई कुड सी हिम क्लियरली। तो हम लोग दोनों मनूवर किया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी हाइट पर नहीं आ रहा था क्योंकि उसका स्पीड ड्रॉप हो जाएगा, तो बिल्कुल पेड़ के ऊपर चल रहा था। सिंस टर्न में हमारा नंबर 2 गुम हो गया, वापस भेज दिया, हम अकेले था, ये दो थे, तो उसके लिए हम अपना एडवांटेज रखना था। हम लोग टर्न कर रहे थे, कभी कभी हम देख रहे थे उनको, एक्सप्लोजन्स एक फायरिंग कर दिया, क्योंकि हमारा फाइट टैंक के ऊपर पड़ गया, इट मूव्ड टुवर्ड्स द पाकिस्तान साइड। जहाज दिखाई नहीं देता, इट्स अ स्पॉट ओनली। तो जब एक्सप्लोजन आता तब तुम सोचता वो दस जहाज है, तो थोड़ी देर में पता लग गया कि ये फ्लैग है, उसको इग्नोर करो और बिल्कुल फोकस करो। हर दफा एक्सप्लोजन एक एक गन का हमारा जहाज खेलता था, तो थोड़ी देर के बाद हम एडवांटेज था, तो हमारी से आएगा ये हम बिल्कुल ऊपर कल के इधर आ गया ऑन माई बैक एंड केबिन, तो वो देख नहीं पाया। जैसे ये करेगा तो बस खत्म, क्योंकि अगर आप इफ यू लूज साइट ऑफ द एयरक्राफ्ट यू फिनिश्ड। तो ये कर रहे कहाँ है वो पता नहीं था कि आपकी हम टैक्टिक बदल दिया। तो बस हम उसके पास नीचे डिसेंड करके और उस पर गड़ा दिया, उनको एक फायर किया, हिट किया, धुआं निकला, ये सब निकला और भागना शुरू कर दिया। उसके पहले कपिला भी गिरा दिया एक एयरक्राफ्ट, और हमने वो भी देखा, हमने चलाया, कैप यू गॉट हिम।
कीलर ने तेजी से अपने आप को हमले से अलग किया, क्योंकि वो भी तब तक बहुत नीचे आ चुके थे। तभी कपिला ने पीछे से आकर ऊंचाई छोड़ रहे सेबर पर एक और कैनन बर्स्ट लगाया। सेबर धुआं छोड़ता हुआ वापस सरगोधा जाने के लिए मुड़ा। सरगोधा के रनवे से कुछ ही दूरी पर ये विमान जमीन पर जा गिरा और इसके पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एसएम अहमद को आग की लपटों और विस्फोट करते गोला बारूद के बीच बहुत बुरी अवस्था में बाहर निकाला गया।
इतने में मैंने पीट डेंजल को देख लिया। इसके बाद मैंने कहा, डेंजल आई एम कवरिंग यू। वो अपने जो उसका टारगेट एयरक्राफ्ट था उससे काफी ऊंचाई पे था, करीब 1,500-2,000 फुट पे, तो उसने वहां से फुल थ्रॉटल उसके ऊपर अटैक मारा और बहुत रैपिडली क्लोज इन किया और अपनी गन से फायर किया। तो जब उन्होंने फायर किया तो उनके बाएं विंग से के राइट विंग रूट से धुआं निकलने लगा सेबर के, और डेंजल इतनी तेज थे तो फिर वो पुल अप कर लिया और ये जो सेबर था सामने सीधा अपने वेस्ट की डायरेक्शन में भाग निकला पूरी थ्रॉटल करके। मेरे लिए बहुत एडवांटेजेस था, तो मैंने कहा डेंजल आई एम गोइंग फॉर हिम। तो मैं उसके पीछे पहुंच गया और मेरी ओवरटेकिंग स्पीड बहुत अच्छी थी, नेट का इतना सुपीरियरिटी था, आई कुड कीप हिम इन माई साइट्स, आई क्लोज्ड इन अगेन। यू नो इट इज़ इत्तेफाक की बात है, मैं करीब उससे 150-200 गज पे था, मैंने जब फायर किया मेरी गन स्टॉप थी, मेरी गन जैम हो गई, मगर मैंने वेरी क्लियरली देखा उनकी किलर की फिल्म में भी आया कि उस सेबर के विंग से धुआं निकल रहा था। इस टाइम हमारा फ्यूल लेवल काफी लो हो गया, फिर हमने अटैक कॉल ऑफ करके वापस आ गए।
अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब किलर के नेट ने लैंड किया तो उसका टायर फट गया, जिसकी वजह से पूरा रनवे ब्लॉक हो गया। कपिला को हलवारा डाइवर्ट किया गया। जिस समय उन्होंने वहां लैंड किया उस समय उनके विमान में ईंधन की कुछ बूंदे ही बची थी।
लैंड करने के बाद हमारा टायर बस्ट हुआ, कोई शेल का उसका पंचर करा दिया था, तो हमने एक संभाल लिया बट रनवे ब्लॉक हो गया, तो कपिला हैड टू गो टू हलवारा।
कपिला और डेंजल को इस बहादुरी के लिए वीर चक्र दिया गया। ये पहला मौका था जब दो भाइयों ट्रेवर और डेंजल को एक ही लड़ाई में एक जैसा विमान उड़ाते हुए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लड़ाई के बाद एयर मार्शल अर्जन सिंह खुद कीलर बंधुओं के घर लखनऊ गए और उनके पिता को उनके बेटों के कारनामों के लिए बधाई दी।
हम लखनऊ के थे तो जब काफी वहाँ हल्ला बल्ला हुआ, व्हेन आई शॉट डाउन आल्सो कीलू बंधु बॉल द ब्रदर्स आर वैलियंट, ऐसे ऐसी चीज बोला और लखनऊ बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अपने अपना बेटा लखनऊ का है तो दो सेवर, और दो दिनों में वो जोर से प्रेस सपोर्ट कर रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे में न्यूज हुआ। लड़ाई के बाद बहुत लोग हमको इधर बुलाया उधर बुलाया। हमारा परिवार बहुत प्राउड है, हमारा फादर बहुत प्राउड था। माई मदर हैड एक्सपायर्ड, चीफ ऑफ अवेयर स्टाफ अर्जुन सिंह, उसने हमारा फादर को लिखा और फादर को मिलता था और कॉल हिम सर, माई फादर वॉज अ प्रोफेसर, कॉल हिम सर। एंड वहाँ जब ही जाते थे लखनऊ विजिट करने के लिए हमारा फादर को भी वहाँ VIP होता था, तो ऐसे काफी ऑनर्ड होता था।
जीत की हवस नहीं किसी पे कोई हवस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण।
ये कार्यक्रम आप दोबारा सुन सकते हैं कल विश्व भारती में। और अब एक नजर खेल समाचारों पर, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद अब भारतीय खिलाड़ी कोरिया ओपन में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। हालांकि आज मिश्रित युगल वर्ग में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तरुण कोना और एनसीके रेड्डी की जोड़ी पहले दौर में चीन के झांगनान और झाओ युलेन से 21-11 21-10 से हार कर बाहर हो गई। कल कोरिया ओपन में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में दो बार की कांस्य पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग में तीसरी वरीयता हासिल थाईलैंड के रत्चानो किंतानोन का सामना करेंगी। महिला एकल वर्ग में इस बार सिंधु के रूप में ही भारत की एकमात्र चुनौती है क्योंकि साइना नेहवाल कोरिया ओपन में हिस्सा नहीं ले रही हैं। पुरुष एकल वर्ग में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पी कश्यप को 8वीं वरीयता दी गई है। कल उनका सामना हांगकांग के वेई नान से होगा। कोरिया ओपन में भारत के के श्रीकांत को 4थी वरीयता दी गई है और उनकी पहली भिड़ंत चीन के तियान हाउवेई से होगी। इनके अलावा HS प्रणय 7वीं वरीयता हासिल चीन ताइपे के चाउ तियन चेन का सामना करेंगे तो अजय जयराम 6ठी वरीयता हासिल डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से पार पाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से प्रणय और जयराम के लिए शुरुआती बाधा को पार करना बेहद मुश्किल है। महिला युगल वर्ग में प्रदन्य गडरे और एनसीके रेड्डी की जोड़ी जापानी जोड़ी का सामना करेगी। वहीं तमाम अटकलों के बाद आखिरकार खेल मंत्रालय ने भारत की सबसे कामयाब महिला युगल जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा को टॉप स्कीम में शामिल कर लिया है। अब इन दोनों को साल 2016 रियो ओलंपिक के तैयारियों के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। वैसे टॉप स्कीम में सुमित रेड्डी और मनु अत्री को भी शामिल किया गया है।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एकजुट दिखने की कोशिशें आज फिर नाकाम होती दिखाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के चुनावों में सीटों को लेकर बीजेपी के बंटवारे पर वो हैरान और दुखी हैं। भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार यौगिक फार्मिंग की अवधारणा का समर्थन करती है। सीरिया के उत्तर पूर्वी शहर हसाका में एक कार बम विस्फोट में 6 लोग मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरियाई सरकार को दिए जा रहे रूसी सैन्य समर्थन का पुरजोर बचाव किया है। थाईलैंड की पुलिस ने पहली बार ये माना है कि पिछले महीने बैंकॉक में हुए बम विस्फोट का संबंध उइगर समुदाय के लोगों को चीन वापस भेजने से हो सकता है। तुर्की के अभियोक्ताओं ने कथित चरमपंथी प्रचार प्रसार के लिए दोगन मीडिया ग्रुप की छानबीन शुरू कर दी है। सरकारी समाचार एजेंसी अनातोलिया का कहना है कि जांचकर्ता मारे गए तुर्की सैनिकों के अनसेंसर्ड फुटेज की जाँच करेगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था तिलक राज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।